हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद के जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं उसकी पार्श्वभूमि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरह से जहां पे महाभारत खत्म होता है वहां पे श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। यह न केवल ऐतिहासिक रूप से है पर यह तत्वज्ञान के रूप से भी है। ऐतिहासिक रूप से महाभारत का जो अंतिम पर्व है वह है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। जैसे 18 अध्याय श्रीमद् भगवद्गीता में वैसे 18 पर्व है श्रीमद् महाभारत में। तो 18 पर्वों में जो महाप्रस्थानिक पर्व है मतलब पांडव प्रस्थान के लिए जाते हैं, वो वनवास स्वीकार करते हैं, वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं। और फिर स्वर्गारोहण पर्व है उसमें कैसे वे शरीर त्याग करके ऊपर लोकों में जाते हैं उसके बारे में वर्णन है। तो जो पांडवों के जीवन का अंत है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, उसके बाद में जो हो रहा है उससे शुरू होता है श्रीमद् भागवतम। तो एक तरह से ये दोनों में कुछ चीजें दोहराई गई है पर अधिकांश रूप से जहां पे महाभारत खत्म होता है वहां पे श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। ये ऐतिहासिक रूप से हो गया। तत्वज्ञान के रूप से भी महाभारत जो है वह अधिकांश रूप से कर्मकांड सिखाता है। धर्म अर्थ काम और थोड़ा सा मोक्ष के बारे में वर्णन है, जरूर उस पे उसको महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है पर उस पे जोर नहीं है। धर्म अर्थ काम इस पे जोर है। और अगर हम सिर्फ महाभारत में पांडवों का जीवन पढ़ेंगे तो पांडव कैसे भक्त है या महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, इसका स्पष्टीकरण हमें आसानी से नहीं होगा। पर भागवतम से हम पढ़ेंगे तो अधिकांश रूप से वही कहानियां हैं, वही प्रसंग है पर उनको शुद्ध भक्ति की दृष्टि से कैसे देखना है यह बताया गया है। तो इसीलिए वैदिक शास्त्र में जो चार पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि इसके अलावा एक पंचम पुरुषार्थ है और वह है प्रेम। प्रेम पुमर्थो महान, चैतन्य मंजुषा में बताया गया है कि कैसे यह सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और इस सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवतम ये विशेष ग्रंथ है, अमल पुराण जिसे कहा गया है। तो ये जो प्रसंग बताया जा रहा है, अभी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद सारे पांडव दुखी हो गए। और बाद में वर्णन आएगा महाभारत में अगर हम पढ़े कि जब ये सब पांडव सबका सब वीर गति प्राप्त हुए, अपने योद्धाओं का अंत संस्कार कर रहे थे और कौरव की ओर से सिर्फ एक कौरव बचा था, उसका नाम था युत्सु। युत्सु ये 100 जो कौरव थे उनका एक आधा भाई था। जब गांधारी गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र, गांधारी बहुत समय तक गर्भवती थी, तो वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि पति पत्नी का संत अगर पत्नी गर्भवती है तो नहीं हो सकता है। तो उस समय तभी धृतराष्ट्र ने उनके जो एक दासी थी उससे संग किया था और उससे युत्सु पुत्र हुआ था। और युत्सु जो था वो अकेला था जो सारे पांडव कौरवों में से बचा था। वास्तव में जब युद्ध शुरू हुआ तभी युद्ध शुरू होने के पहले युद्ध के नियम के अनुसार कोई भी कौरव कोई भी योद्धा दोनों पक्षों में से एक पक्ष चुन सकता है पर युद्ध चालू होने के बाद पक्ष बदल नहीं सकते। तो युद्ध जब चालू हो रहा था तभी युधिष्ठिर ने घोषणा की कि आप में से कोई है, आप सब जानते हैं कि मेरा जो कार्य है, मेरा जो उद्देश्य है वह नेक है, वह धर्मशील है। तो अगर आप में से कोई अधर्मी दुर्योधन को त्याग कर मेरे पक्ष में आना चाहते हो तो मैं आपको पूरा संरक्षण दूंगा, जरूर आ जाओ। तभी युत्सु कौरव के पक्ष में से आ जाता है। और तो जब ये घूर घूर के सब कौरव दुर्योधन खास करके उसकी ओर देखता है पर उसको स्वागत करते युधिष्ठिर और युधिष्ठिर कहते हैं आओ आओ तुम्हें ही सारे बाकी कौरवों के अंतिम संस्कार करना पड़ेगा क्योंकि और कोई बचेगा नहीं और जो एक तरह से भविष्यवाणी युधिष्ठिर करते हैं वह सत्य होता है कि कौरवों में से कोई भी बचता नहीं है। और जब कौरवों के तंबू में बाद में युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जाते हैं तो वहां पे युधिष्ठिर बड़ा विचलित होके उद्विग्न होके मोहित होके बैठा होता है। तभी युधिष्ठिर को सांत्वना करते हैं और उसे कहते हैं कि आप आपका कर्तव्य भी पूरा करो। तो युधिष्ठिर सब कौरवों के अंत संस्कार करते हैं और तभी कर्ण जो होता है, कर्ण का सारा परिवार जो होता है, उसके पुत्र होते हैं, उसके भाई होते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है और अंत में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु 17वें दिन में होती है। 18वें दिन में 18वें दिन में दुर्योधन की मृत्यु होती है। पहले शाल्य की मृत्यु होती है और उसके रात को उसके शाम को लगभग दुर्योधन की मृत्यु होती है। उस रात में अश्वत्थामा बाकी सब योद्धाओं का वध करता है। तो इस तरह से कोई भी नहीं बचता है पूरे युद्ध में, क्योंकि दुर्योधन का यह दृढ़ संकल्प रहता है कि आखिरी योद्धा तक मैं युद्ध करूंगा। पर बाद में जब देखता है कि उस आखिरी दिन में शकुनी की मृत्यु हो जाती है, शाल्य की मृत्यु हो जाती है, उसके पिछले दिन ही जिस दिन कर्ण की मृत्यु होती है उसी दिन भीम दुशासन को भी मारता है। जिस दिन 17वें दिन जब गांधारी को पता चलता है, 16वें दिन के रात को जब गांधारी को पता चलता है कि उसके 98 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, तो वह सोचते हैं बहुत हो गया, कम से कम मेरा एक पुत्र तो बचना चाहिए। इसीलिए अगले दिन सुबह वह धृतराष्ट्र से इजाजत लेके तुरंत वो सब ये जो योद्धा होते हैं युद्ध कुरुक्षेत्र में कर रहे होते हैं और धृतराष्ट्र गांधारी वे हस्तिनापुर में होते हैं। तो हस्तिनापुर से निकल के वो कुरुक्षेत्र में आ जाती है। जब आके जब पहुंचती है तभी उसको सारा दिन निकल जाता है आने में, और जब पहुंच जाती है तो उसको पता चलता है कि दुशासन की मृत्यु हो गई। और तभी वो सोचती है कि कम से कम मेरा एक पुत्र तो बचना चाहिए। इसीलिए वह अपने दृष्टि से दुर्योधन को शक्ति देने का प्रयास करती है, पर वह भगवान कृष्ण की योजना से दुर्योधन जो होता है उसकी जांघ जो होती है वह ढक लेता है कपड़े से। आप सब जी कहानी जानते हैं, ये बता रहा हूं मैं इसलिए कि 17वें दिन तक लगभग सारे जो कौरव महारथ थे उनकी मृत्यु हो जाती है। 18वें दिन शाल्य और शकुनी उनकी मृत्यु हो जाती है। शाल्य का युधिष्ठिर वध करते हैं, शकुनी को सहदेव वध करते हैं। और फिर उसके बाद में जब ये देखता है तो दुर्योधन डर के भाग जाता है, डर के भाग जाता है। तो उस समय बाकी जब दुर्योधन भागने लगता है तो कौकी को योद्धा बचते ही नहीं है, वो भी भाग जाते हैं या उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 3 योद्धा रहते हैं तभी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मन, ये 3 बचते हैं कौरव के पक्ष से। और फिर पांडव के पक्ष से बहुत योद्धा बचे होते हैं अभी। पर उस रात को अश्वत्थामा जो होता है बड़ी बेरहमी से बाकी सब कौरव का पांडव का वध कर देता है। अभी वो प्रसंग अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, वो प्रसंग आएगा मतलब, या वो हो चुका है पर उसका वर्णन अभी तक महाभारत में जो भागवतम में वो जब हो जाता है तो देखते हैं सब कि पूरा विध्वंस हो गया। वास्तव में 8वां अध्याय है, जो 7वां अध्याय था उसमें अश्वत्थामा की सजा के बारे में बताया गया है। तो मतलब ये जो प्रसंग है, 18 दिन का युद्ध खत्म हो गया है, 18वें रात को सारे पांडवों के बचे योद्धा थे उनको मार डालते हैं, अश्वत्थामा अकेला पूरा बेरहमी से वह सबको मार डालता है। और उस रात को वास्तव में जब अश्वत्थामा सोच रहा है क्या करना चाहिए, उसको बड़ा क्रोध आया होता है कि मेरे जो पिता थे कृपा द्रोणाचार्य, उनको अनैतिकता से मारा गया था, तो इसीलिए वो सोचता है मैं भी अनैतिक बन जाऊंगा। तो वो रात को बड़े क्रोध में बैठा होता है, सोच रहा है क्या करना होता है। तो फिर वह लेटा होता है और रात को देखता है कि अनेक छोटे छोटे पंछी सोए हुए हैं, पेड़ सैकड़ों पंछी सोए हुए हैं। और अचानक वो देखता है कि तभी वहां पे एक बड़ा पंछी आ जाता है, और वो पंछी बहुत बड़ा नहीं है, तो मुझे संस्कृत शब्द है उसको हिंदी भाषांतर करते अलग अलग पंछी बोल सकते हैं वो, पर वो बड़ा पक्षी आता है, चक 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 चक, सारे जो सोए हुए पक्षी है उनको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। और कुछ ही समय में सैकड़ों पंछी वहां पे गिरे होते हैं। अब ये अकेला पंछी अगर दिन में बाकी सब पंछी जगे हुए हैं तो वो शायद ही कुछ पंछियों को मार पाएगा, पर जब सोए हुए हैं तो वो सैकड़ों पंछियों को मार डालता है। और जब अश्वत्थामा ये देखता है, सोचता है हाँ यही करना चाहिए मुझे, यह जरूर नियुक्ति का ही लक्षण है कि वह सब पांडव योद्धा भी सो रहे हैं उनको तभी जाके मारना चाहिए। तो उसके मन में विचार आता है कि नहीं यह अनैतिक है, पर वो तो क्या अनैतिक है, उन्होंने मेरे पिता को अनैतिकता से मारा है, जिन्होंने अनैतिकता से मारा है उनको अनैतिकता से मारने में कोई गलत सही है। तो वो सोचता है और फिर तभी उसके बाजू में कृतवर्मन और कृपाचार्य सोए होते, उनको उठाता है और वो उनको अपने अपना विचार सुनाता है। और जब सुनाता है तो फिर कृतवर्मन और कृपाचार्य दोनों हॉरर मतलब भयानकता के भाव से उसकी ओर देख ले, क्या विचार कर रहे हो तुम, किसी भी व्यक्ति को सोए हुए वेदा को कोई मारना नहीं चाहिए। वास्तव में क्षत्रियों का धर्म ऐसे होता है कि ऐसे भी नहीं कि दूसरा दूसरी ओर कहीं देख रहा है तभी तीर मार दो, वो अगर कोई एक योद्धा किसी दूसरे योद्धा पे तीर भी मार रहा है तो पहले उसको चेतावनी देगा। मतलब क्या है कि जो युद्ध होता है वह नैतिकता के अनुसार होना चाहिए। तो जरूर द्रोणाचार्य को एक तरह से कह सकते हैं कि जो धृष्टद्युम्न ने अनैतिकता से मारा था, पर उसके पहले ही दुर्योधन द्रोणाचार्य ने एक तरह से हार या रेजिग्नेशन इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। उन्होंने क्या हो गया था, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले गए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता चल गया था कि वो जब द्रोणाचार्य 5 दिन के लिए सेनापति थे, 10 दिन तक भीष्म थे, 5 दिन तक द्रोणाचार्य थे, 2 दिन तक कर्ण थे और फिर 1 दिन शाल्य था और फिर 1 रात के लिए अश्वत्थामा था। तो अश्वत्थामा को वास्तव में सेनापति बनाता है दुर्योधन, कि जब देखता है कि अभी तुम बचे हो तुम सेनापति बन जाओ। तो दुर्योधन की जांग टूटी हुई है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, पर फिर वो कृपाचार्य कृतवर्मन को कहता है कि आप पानी लेके आओ नदी से, और उससे वो सेनापति के रूप में उसका अभिषेक कर देता है। तो फिर उससे तो जब 5वें दिन में जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे होते, द्रोणाचार्य को बार बार कोसते हैं दुर्योधन, वो कहता है कि तुम तो अर्जुन के शिक्षक हो, तुम चाहो तो अर्जुन को आराम से हरा सकते हो, पर तुम क्या आ सकते हो, तुम इसलिए है। तो उससे बहुत क्रोध हो जाते हैं द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य क्रोधित होकर क्या फैसला करते हैं, वो अपने जो दिव्य अस्त्र है इस्तेमाल करते हैं साधारण योद्धाओं पे। यह अनैतिक है जो दिव्य, जैसे ये एक तरह से आधुनिक आधुनिक जीवन में आधुनिक समाज में जैसे आतंकवाद होता है, आतंकवाद मतलब ये युद्ध नीति की पूरे उल्टी है, उल्टा जाना है। युद्ध नीति मतलब क्या, एक योद्धा दूसरे योद्धा पे आक्रमण करेगा, दूसरे योद्धा भी चौकन्ना होना चाहिए, दूसरा योद्धा तत्पर होना चाहिए, दूसरा योद्धा सम होना चाहिए। 3 चीजें हैं, चौकन्ना होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम मतलब एक एक अगर घुड़सवार है तो वो जो पैर पे चलने वाला योद्धा है उस पे आक्रमण नहीं करेगा, वो सम होना चाहिए, उसके साथ साथ तत्पर होना चाहिए। अगर 2 योद्धा जो है वह धनुष्यमान से युद्ध कर रहे हैं तो दूसरे के बाद अगर धनुष्य नहीं है तो पहला योद्धा उस पे तीर नहीं चलाएगा। तो दोनों के पास दोनों तत्पर होने चाहिए, दोनों चौकन्ने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक योद्धा दूसरे युद्ध से युद्ध कर रहा है पीछे से उसको तीर मार दो, यह गलत है। तो यही वास्तव में कौरवों ने अभिमन्यु के साथ किया था जब 6-7 में आ गए थे। तो जो आधुनिक समाज में आतंकवाद है वह क्या है, बिल्कुल तीनों में, वो तत्पर भी नहीं है, सम भी नहीं है और चौकन्ने भी नहीं है। तो कहीं भी हम जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, बूम एक बम उड़ जाता है। तो यह वास्तव में तमोगुण का लक्षण है, बिल्कुल जो आध्यात्म जो धर्म युद्ध है उसका पूरा उल्टा है। पर शास्त्रों में बताया गया है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि षठो षठ्यम, कि अगर दूसरा व्यक्ति अनैतिकता करता है तो हमें भी अनैतिकता करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो नैतिक व्यक्ति है उनसे नैतिकता से युद्ध करना है, पर अगर अनैतिकता से कोई आक्रमण करता है तो फिर नैतिकता को बनाए रखना यह उचित नहीं है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने दर्शाने के लिए क्या करते हैं, वह पांडवों को कई बार नैतिक नियमों को थोड़ा तोड़ने को लगाते हैं। पर जो अभी तक जो नैतिक नियम जो टूटते हैं पांडवों के रुचि से, अगर हम उसमें भी हम जो उसका ग्रेविटी है, उसकी गंभीरता है देखते हैं, तो वह पांडव जब भी नियम तोड़ते हैं वो कोई ज्यादा गंभीर उल्लंघन नहीं है। पर जो कौरवों के उद्धार से जो उल्लंघन होता है, द्रौपदी का वस्त्र हरण करना, 6 योद्धा साथ में आके एक 16 वाला वर्ष के युवक को मारना, यह सब बहुत घोर उल्लंघन होता है। अगर पांडवों के वैसे उल्लंघन है तो क्या हुआ है, जो भीष्म है उनको साथ में अर्जुन और शिखंडी दोनों प्रहार करते हैं, पर वह भीष्म ने ही बताया है। और ऐसे नहीं है कि अर्जुन छिपके ही प्रहार करते हैं, अर्जुन सामने भी आते हैं पर शिखंडी और अर्जुन दोनों का आक्रमण होता है। तो वास्तव में यह ऐसे नहीं है कि भीष्म को बताए बिना पीछे से आके उन पर आक्रमण करना, द्रोणाचार्य पर भी जब होता है तो द्रोणाचार्य दुर्योधन के शब्दों से वचनों से क्रोधित होकर वह क्या करते हैं, जो दिव्य अस्त्र है वह जनसाधारण साधारण जो योद्धा है, साधारण जो सैनिक है उन पे प्रहार कर देते हैं। और जब उन पे प्रहार कर देते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में एक एक अस्त्र से वो पांडवों के सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। और तब द्रोणाचार्य देखते हैं कि आसमान में सप्तऋषि आ गए हैं, और सप्तऋषि कहते हैं द्रोणाचार्य को, हे द्रोणाचार्य तुम अनैतिकता से युद्ध कर रहे हो, तुम युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें अभी युद्ध छोड़ देना चाहिए, तुम नियमों के तोड़ने के कारण अभी तुम अनैतिकता से दूषित हो गए हो। जब ये सुनता है द्रोणाचार्य तो वह भयभीत हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं और संकोच में आके वह अपना धनुष नीचे कर देते हैं। और जब धनुष नीचे कर देते हैं तुरंत दृष्टद्युम्न ने यह मौका देखता है और दृष्टद्युम्न उन पर प्रहार करने लगता है। दृष्टद्युम्न जरूर अनैतिक कार्य करता है पर जो अनैतिकता का प्रमाण है वो उतना नहीं है, क्योंकि पहले उसी युद्ध के में पहली जो अनैतिकता थी वो द्रोणाचार्य ने की थी। तो अंत में द्रोणाचार्य का वध हो जाता है। तो अश्वत्थामा इससे बहुत क्रोधित होता है और कृपाचार्य और कृतवर्म समझाते हैं अश्वत्थामा को कि जो अनैतिकता के विस्तर होते हैं, अनैतिकता विस्तर होते हैं। पिछले हफ्ते जब महाराज विशोपनिषद पर प्रवचन दे रहे थे वो बता रहे थे कि कैसे किसी सवाल पूछा कि आजकल समाज भ्रष्ट है, तो हम बिल्कुल भ्रष्टहीन नहीं रह सकते इस समाज में। तो भाई कम से कम हमें दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर हमारा काम पूरा करने के लिए कुछ करना जरूरी है तो वो एक तरह से अनिवार्य है, पर हमें शोषण नहीं करना चाहिए। तो मतलब जो अनैतिकता है उसके भी स्तर होते हैं। तो अगर किसी परिस्थिति में वश में आकर कुछ उसको पर्याय है ही नहीं वो करना, तभी कुछ कार्य करना, और खुद के लोभ के कारण दूसरों का शोषण करके बहुत सा पैसा कमाना, ये भ्रष्टाचार के अगर हम उस पर स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, तो अनैतिकता का स्तर है। तो सोए हुए योद्धाओं को मारना यह बहुत ही अनैतिक कार्य है। तो कृपाचार्य और कृतवर्म दोनों समझाते उसको, मैं ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और कृपाचार्य कहते हैं कि वो सोचते हैं कि अश्वत्थामा बहुत हॉट हेडेड है, बहुत गर्म दिमाग वाला है। उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत महान योद्धा हो, अभी आप तुम सो जाओ, कल सुबह उठेंगे और हम तीनों जाके साथ में पांडवों पे आक्रमण कर देंगे और हम उनको हरा देंगे, और तुम्हें जो बदला लेना है बदला यशस्वी रूप से ले देंगे। तो अश्वत्थामा जानता है कि अकेला वो पांडवों से युद्ध नहीं कर सकता है, बहुत यशस्वी नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी जाऊंगा, अगर तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, और ऐसे बोल के चलने लगता है। तो कृतवर्मन और कृपाचार्य तब सोच रहे होते क्या करें, और वह बात करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो दुर्योधन के पक्ष में आ गए थे और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया है, तो हमें भी उसके साथ जाना ही चाहिए, वह हमारा सेनापति है, उसके आदेश पालन करना चाहिए। वास्तव में यह जरूरी नहीं है, अगर कोई अनैतिक कार्य के लिए बता रहा है तो उसका पालन करना यह जरूरी नहीं है। जब दूसरा महायुद्ध हुआ तब जर्मनी में हिटलर के अधीन जो उसके सेनापति या सैनिक थे उन्होंने लाखों जीव लोगों को मार डाला, और बड़े बेरहमी से मार डाला। और जब बाद में उनको पूछा गया कि आपने इस तरह से लाखों लोगों को मार डाला, गैस चैम्बर्स हुआ करते थे, उसमें वो जू लोगों को एक कमरे में बंद कर देते थे और फिर उसमें जहरीला गैस डाल देते थे, तो इस तरह से लाखों लोगों को मार डाला उन्होंने। तो उनको जब पूछा गया तो उनको बताया उन्होंने कि क्यों मारा, हमने जो आदेश दिया था हमने आदेश पालन किया। तो वास्तव में आदेश पालन करना है, पर कौन आदेश दे रहा है, किस आधार पर आदेश दे रहा है, उस आदेश से क्या होने वाला है, वह विचार करना चाहिए। और यह हम देखते हैं अर्जुन के उदाहरण से भी कि भगवान को युद्ध करने को बोल रहे हैं पर अर्जुन स्वीकार तुरंत नहीं करता है, वो अच्छी तरह से विचार विमर्श कर से डिस्कशन करके संवाद करके फिर कार्य करता है। तो ये दोनों गलत पर्याय गलत निर्णय करते हैं। और फिर अश्वत्थामा जाता है, वो लंबी कहानी है उसमें नहीं जाएंगे, पर अश्वत्थामा रात को जाके सबको बड़ी बेरहमी से मार डालता है और जो भी बच के भागने का प्रयास करते हैं वो तंबू से वहां पे उनको कृतवर्मन और कृपाचार्य मार डालते हैं, तो कोई भी नहीं बचता है। तो इस तरह से कौरव के पक्ष से कोई नहीं बचा है, पांडव के पक्ष से कोई नहीं बचा है। तो वास्तव में युद्ध में ऐसी प्रथा होती है कि जब युद्ध में कोई पक्ष जीत जाता है तो जीते हुए पक्ष के जो सेनापति या प्रधान योद्धा होते हैं वो उस रात में तंबू में न सोकर वो रणभूमि में ही सोते हैं कि हम अभी ये एक तरह से क्या है सोना, मतलब कि ये जगह मेरी है इस जगह पे मैं सो जाता हूँ आराम से तो रणभूमि में सोना मतलब अभी हमने ये जगह जीत लिया है
चारा लोकनाथ भगवान की इच्छा।
तो वह एक तरह से विजय की घोषणा है। तो इसीलिए क्या होता है, पांच पांडव भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के एक घनिष्ठ रिश्तेदार होते हैं सात्यकी। तो ये सात जो होते हैं सात्यकी अर्जुन के भी बड़े प्रिय मित्र होते हैं, एक तरह से अर्जुन के शिष्य मानते हैं उनको, अर्जुन को अपनी तरह से शिक्षा गुरु मानते हैं। शिक्षा मतलब धनुर्विद्या की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा। तो वहां पे वे ये सात लोग जो होते हैं द्रौपदी के साथ, ये वास्तव में यहीं पे जाकर रणभूमि जाकर सोते हैं। इसीलिए जब अश्वत्थामा सब का वध करता है तंबू में जाता है वहां पे ये नहीं होते हैं। और फिर जब उनको पता चल जाता है तो बहुत उदास हो जाते हैं और हृदय टूट जाता है। और फिर अश्वत्थामा को कैसे सजा देते हैं पिछले अध्याय में बताया गया है, और अभी इस अध्याय में वर्णन आता है कि अंत संस्कार करने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर बहुत मायूस है, बहुत उदास है। क्यों? कि वो सोच रहा है कि मेरे कारण मुझे राजा बनाने के लिए सब युद्ध हुआ। और जब ये अंत संस्कार कर रहे होते हैं तो तभी कुंती का हृदय बड़ा उदास हो जाता है। वो सोचते हैं कि कर्ण तो आखिर मेरा ही पुत्र था, तो अगर वो मेरा पुत्र था तो कोई ना कोई तो उसका अंत संस्कार करना चाहिए, कोई भी नहीं अंत संस्कार करने के लिए, तो क्या होगा अभी। तो इसीलिए वह युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर सारे पांडव जाते हैं तो कहते हैं कि तुम अभी जो जल अर्पण करना है वह तुम कर्ण के लिए अर्पण करो, वह तुम्हारा बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर जब सुनते हैं तो अपना सिर पकड़ लेते, क्या बोल रहे हैं तुम, ओ जान। तो युधिष्ठिर वास्तव में कर्ण से बहुत डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी जो कौरव पक्ष में थे वह उतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो अर्जुन को मार सके या और किसी पांडव को मार सके। युधिष्ठिर को पूरा विश्वास था कि जो दुर्योधन है उसका प्रतिकार भीम कर सकता है, पर उनको भय था कि कर्ण अर्जुन को कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जब कर्ण की मृत्यु जाती है तो युधिष्ठिर बड़े शांत हो जाते हैं, अभी हमने युद्ध जीत लिया है। तो जब अर्जुन ये सुनता है तो फिर ये कैसे बताओ हमें, तो फिर वो बाद में सारी कहानी बताते हैं, कुंती बताती है, फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण बताते हैं, नारद मुनि वहाँ पे आते हुए बताते हैं, कुंती पूरा नहीं बता पाती है क्योंकि वह एक तरह से मायूस भी होती है, दूसरी तरह से क्योंकि वो पुत्र उसको विवाह के पहले हुआ होता है सूर्यदेव से, तो इसीलिए वो थोड़ी उस पर शर्मिंदा भी होती है, तो ज़्यादा बोलती नहीं है। पर जब उनको पता पूरी कहानी पता चलती है तो युधिष्ठिर के सीने पर एक और बड़ा सदमा हो जाता है, न केवल मैंने मेरे चुलत भाई चचेरे भाइयों को मार डाला, पर मैंने मेरे सगे लगभग सगे भाई जैसे को ही मार डाला और मेरे बड़े भाई को मार डाला, तो उससे और उदास हो जाते हैं।
और जो
उद्विग्नता है उनका, उसका वर्णन महाभारत में बड़े विस्तारित रूप से आता है। तो यह अगले अध्याय का चर्चा है वास्तव में, अगले अध्याय में पता इस अध्याय के अंत में और अगले अध्याय की शुरुआत में बताया गया कैसे कि सब पांडव सब युधिष्ठिर जब उदास हो जाते हैं तो सब उनको सांत्वना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां महाभारत वर्णन आता है कि जब सबका अंत संस्कार हो जाता है उसके बाद में अभी तक जो कौरव है वह पांडव जो है वह इंद्रप्रस्थ ना इंद्रप्रस्थ जाते हैं ना हस्तिनापुर जाते हैं, वह नदी के तट पे ही बैठते हैं क्योंकि सारे रीतिवास पूरे भी करने हैं। और जब इस तरह से बैठे बैठे होते हैं और चर्चा करते हैं और तभी युधिष्ठिर को भय होता है कि सब पांडव का वध हो, सब कौरव का वध हो जाएगा, उससे गांधारी वधि क्रोध हो जाएगी। तो इसीलिए गांधारी को शांत करने के लिए और धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आप जाके संदेश दे दो उनको। तो फिर भगवान कृष्ण जाते हैं, उनको संदेश देते हैं कि आप पांडवों पे क्रोधित मत हो जाओ क्योंकि ये पांडवों का दोष नहीं था, ये कौरव का ही दोष था। तो गांधारी उसे शांत हो जाती है थोड़ी बहुत, इसलिए वो पांडवों को शाप नहीं देती है, पर हम जानते हैं कि वो क्रोध के कारण जो क्रोध है कहीं ना कहीं तो निकालना है, तो इसीलिए वो क्रोध भगवान कृष्ण पर निकाल देती है और वो कृष्ण से कहती है कि कृष्ण को शाप दे देती है। भगवान कृष्ण को कोई शाप नहीं दे सकता है, पर वो जो क्रोध का भाव होता है वह वो वहां वैसे निकालती है वो। पर बाद में जब युधिष्ठिर बैठते हैं वहां पे और सब चर्चा होने लगती है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कितना पापी हूं, मेरे कारण लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, अभी जो मैंने पाप किया है इसका पश्चाताप, तो मुझे अगर इसका प्रायश्चित मैं जन्म जन्म तक करूंगा तो भी इसका प्रायश्चित नहीं होगा, तो कम से कम एक जन्म तक तुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो कहते हैं भीम तुम राजा बन जाओ, मैं जंगल में जाके प्रायश्चित में लग जाऊंगा। तो भीम सिर पकड़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं फिर और युधिष्ठिर बड़ा गंभीर होते हैं। तो फिर उसमें महाभारत में वर्णन आता है कि रात भर वो चर्चा करते रहते हैं, पहले भीम समझाता है, फिर अर्जुन समझाते हैं, फिर नकुल समझाते हैं, फिर सहदेव समझाते हैं, फिर व्यासदेव समझाते हैं, फिर वहां पर ऋषिगण होते हैं वे समझाते हैं, और युधिष्ठिर किसी की बात नहीं मानते, द्रौपदी समझाने का प्रयास करती है, द्रौपदी भी समझाती है, फिर भीम जो है क्रोध हो जाते हैं, तो फिर भीम उकसाने का प्रयास करते हैं युधिष्ठिर को। तो ये सब जो सुन रहे हैं युधिष्ठिर सुनते हैं पर ज्यादा कुछ बोलते नहीं, थोड़ा कुछ बोलते हैं जिससे कि वो दिखा देता है कि मैं आपके बात से माना नहीं, स्वीकार नहीं करता हूं इसको, इस तर्क को, इस विचारधारा को। फिर भीम कहता है कि हे युधिष्ठिर राजा, युधिष्ठिर हमने बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर दिया है, पर अभी एक योद्धा है, एक शत्रु है जिसका वध तुम्हें ही करना पड़ेगा, अगर तुम इस शत्रु का वध नहीं करोगे तो हमने जो भी विजय प्राप्त की है वह सारी पराजय में बदल जाएगी, और यह शत्रु है तुम्हारा अनियंत्रित मन।
कहते हैं कि तुम्हारे अनियंत्रित मन के कारण तुम अभी विजय को पराजय में परिवर्तित कर रहे हो,
तो सहम जाओ और अपने मन पे विजय प्राप्त कर। और जब युधिष्ठिर सुनते हैं तो वो युधिष्ठिर भी क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि जब युधिष्ठिर का किसी को डांटना होता है तो युधिष्ठिर अपना आवाज नहीं उठाते, वो क्या कहते हैं जिसे को डांटना होता है उसको हे बालक
संबोधित करते हैं।
तो
वही एक तरह से डांट जाते हैं क्योंकि बड़े व्यक्ति को बालक बोलते हैं। तो
जब जंगल में भी जब दुर्योधन आता है अपने अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने के लिए काम्यवन में, वो लंबी कहानी है, तो गंधर्व उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर अर्जुन गंधर्व को हरा देते हैं और फिर दुर्योधन को बंदी बनाया और युधिष्ठिर के सामने लेके आते हैं, तभी भी उसको बोलते हे बालक ऐसी नादानी वापस मत करो।
तो इससे दुर्योधन और क्रोधित हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे
बताते हैं कि हे बालक, भीम को कहते हैं कि वास्तव में अनियंत्रित मन का लक्षण है आसक्ति, और मैं तो विरक्ति प्रदर्शित कर रहा हूं, आसक्त तो तुम हो
इसीलिए तुम राज्य चाहते हो और अपनी आसक्ति को पूरी करने के लिए मुझे राजा बनाना चाहते हो। तो तुम आसक्त रहो, मैं विरक्त होकर मेरे मन पे नियंत्रण प्राप्त करके जंगल में चला जाऊंगा। तो
बहुत सुंदर संवाद है वहां पे।
पर उसके बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम सब जाके भीष्म पितामह से मिलेंगे और भीष्म पितामह से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो वह युधिष्ठिर महा सोचते हैं कि ये सब हो गया है, कम से कम ऐसे जंगल में जाना है तो सीधा जंगल में जाना, कम से कम भीष्म पितामह से जाके मिलना चाहिए। और फिर भगवान कृष्ण को मना देते हैं कि भीष्म पितामह का जाना भी है तो उनको क्या प्रसन्न करेगा, उनको प्रसन्न करेगा कि तुम राजा के वेश में जाओ, और राजा के वेश में अगर जाओगे तो उनका ये सपना था, तुम उनके पोते हो, का सपना था कि तुम हमेशा राजवेश में रहो, तो तुम्हें राजा बनेगा, तो उनका सपना तुम्हें पूरा करना चाहिए। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज जंगल में जाने का फैसला कर लेते हैं, पर फिर भी वो राज्याभिषेक स्वीकार कर लेते हैं। एक तरह से पूरा राज्याभिषेक नहीं होता है, पर कुछ हद तक राज्याभिषेक हो जाता है, और फिर वो जाके भीष्म पितामह से मिलते हैं, और फिर भीष्म पितामह के उपदेश से वे स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, और भगवान की इच्छा है कि मैं राजा बनूं, तो फिर राजा बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये संसार के नियम इतने विकट है कि वास्तव में हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता है। हम भौतिक स्तर पर जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से वास्तव में दुख अधिक अधिक बढ़ जाता है, दुख कम नहीं होता है कभी भौतिक स्तर पर। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करके भगवान की भक्ति करके हम इस भौतिक जगत में जो दुख होते हैं उनके परे जा सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निनाश कलये शुक्लयोनिषदायमानः दुःख औषधं तदपि दुःखमतद्धियाः मुमान् व्रजामि तम वद मे तव दास्ययोगम्। वह कहते हैं यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, सारा जन्म किसमें निकल जाता है कि जो प्रिय चाहिए हम उसे संयोग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए पुत्री चाहिए, मुझे ऐसा पति पत्नी चाहिए। तो जो प्रिय है उससे हम संयोग करने का प्रयास करते हैं, जो अप्रिय है उससे छोड़ने का प्रयास करते हैं, उसे वियोग करना चाहते हैं। पर क्या होता है, बहुत बार जो अप्रिय है मिलता है, जो प्रिय होता है चले जाता है। तो क्या होता है यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, तो ऐसे ही सारा जन्म निकल जाता है। और फिर शोकाग्निनाश कल योनिषदायमानः, शोक की अग्नि में सारे जीव जो है दल जल रहे हैं, तो फिर क्या उसके लिए उपाय है, उपाय है वो कहते हैं कि नहीं, कोई कहेगा भौतिक स्तर पे उपाय क्या है कि जो प्रिय चाहिए वह प्राप्त करने के लिए आप और प्रयास करें और प्रयास करें। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, दुख औषधम तदपि दुखम तद्धियाहम। वह कहते हैं कि जो दुख को निकालने के लिए जो हम औषधि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो उसका हल निकालते हैं, वह और बड़े दुख का कारण बन जाता है, वह और बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। दुख औषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम, इसलिए क्या करना चाहिए, वो कहते हैं भौतिक स्तर पर हमें जिम्मेदारी करनी है, पर अगर हम ये आशा रखते कि भौतिक स्तर पर जिम्मेदारी पूरी करने से मेरी समस्याओं का हल हो जाएगा तो हमारी आशा निराशा में बदल जाएगी। भौतिक स्तर पर हमें जिम्मेदारी पूरी करनी है, पर कैसे करनी है, भुमान वद मे तव दास्य योगम, दास्य योगम, ये कैसे मैं आपका दास्य बनके, जो भक्ति योग में अनेक कार्य है तो प्रधान भाव क्या है, दासत्व है कि मैं प्रभु आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा मैं कैसे करूँ। तो इसीलिए भक्ति योग को यहाँ पे दास्य योगम बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, कैसे वद में है प्रभु बताओ मुझे कि इस जटिल भौतिक जगत में मैं आपकी सेवा कैसे करूं, और यह इस भौतिक जगत के हमारे जीवन में एक समस्या होती है, पांडव के जीवन में हम देखते तो कैसे षड्यंत्र थे उनके जीवन में हो रहे थे, उसके बीच में उनके उदाहरण से हम देखते हैं कि कैसे वद में तब दास्य योगम, वो कैसे अपने जीवन से दिखाते हैं हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना है, और उसके द्वारा जो दुनिया की समस्याएं हैं उसके परे जाना है। भक्तिवरण ठाकुर कहते हैं संसार विपद होते अवश्य उद्धार, कहते हैं कि अगर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो विपद आएगी, पर उनसे जो उद्धार है भगवान की कृपा से जरूर हो जाएगा। तो यही कैसे उद्धार होता है पांडवों का, यह धीरे धीरे महाभारत में और महाभागवत में बताया गया है। पांडव शुद्ध भक्त है
और उनके उद्धार का कोई सवाल नहीं है। उद्धार यहाँ पे मतलब भौतिक स्तर पे भी जो समस्याएं हैं कैसे हल होती है, समस्या आती है जाती है, पर हमेशा भगवान की भक्ति में जुड़े रहते हैं, उसका वर्णन भागवतम के आगे के अध्यायों में आएगा। किसी कोई सवाल है? यस प्रभु।
हिटलर का उदाहरण देके कहा कि ये नहीं देखा कि हिटलर का क्या कैसे किस दृष्टिकोण से वो मार रहा है, बस उन्होंने कहा इसलिए मारा। तो हमें चाहिए कि जो अथॉरिटी है मतलब किस दृष्टिकोण से, तो उसके साधक के जीवन में भी जो गुरु के प्रतिनिधि हैं उनको भी इसे ऐसे परख सकते हैं।
क्या साधक के जीवन में हमें गुरु के प्रतिनिधि हैं उनको उनके आदेशों को हमें परखना चाहिए? अधिकांश रूप से जो हमें व्यवहारिक रूप से कार्य करने होते हैं उसमें साधारणतः अनैतिकता कुछ नहीं आती है। तो जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वह हमारे हित चिंतक होते हैं और हमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, पर अगर कोई ऐसा आदेश आता है कि जो हमें लगता है कि ये नैतिकता के अनुसार नहीं है या प्रभुपाद जी के ग्रंथों में दिया है ऐसे नहीं है, तो फिर स्पष्टीकरण करना गलत नहीं है, उचित ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद बताया था कि हमें वास्तव में क्या करना है, हमें वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों के आदेशों के अनुसार जीवन जीना है। ऐसे नहीं है कि हम हमारे मनोगढ़ित भाव से कुछ कार्य करना है। तो अमेरिका में एक मंदिर था, उसके जो वहाँ पे जो अध्यक्ष थे, तो उस अध्यक्ष की पत्नी ने सारे मंदिर के लोगों को बता दिया कि मेरे जो पति है वो भक्त सुल्तान सुबह ठाकुर के अवतार है और सब वो उनके लिए एक बड़ा कमरा आ गया, सब उनको दंडवत करने लग गए और अलग अलग तरह से वो बहुत से गलत कार्य बता रहे थे करने को और सब वो कर रहे थे। और जब प्रभुपाद जी को ये खबर मिली तो प्रभुपाद जी सीधा मंदिर में आ गए और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा उनके पास गए और उनको पूछा आप कौन हो तो अभी जब गुरु आ गए थे पूछते तो मैं आपका शिष्य हूँ। तो प्रभुपाद जी ने ठीक है, तो शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। हाँ, तो फिर जो मंदिर के सारे चाबियां हैं मुझे दे दो प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी सारी चाबियां दे दी और फिर उन्होंने बोला अभी तुम जा सकते हो ऑफ कोर्स उनको दूसरी कोई सेवा दे दी। पर बाद में प्रभुपाद जी सब शिष्यों को डांट रहे थे कि क्या आपने मेरे ग्रंथ पढ़े नहीं है, क्या आपने मेरे ग्रंथों से पढ़ के आप समझ नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है और हमारे जीवन में शायद ही ऐसे के प्रसंग आएगा तो अभी साधारणतः सब भक्त जो है तत्वज्ञान से सीखे हुए हैं, पर एक तरह से जो है हमें बताया गया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इसमें जो तीन चीजें हैं प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो प्रणिपात जो है, प्रणिपात से क्या होता है, हमें गुरु जो है मार्ग बताते हैं। अगर मुझे पता है क्या करना है ऐसे अगर बोलते हैं तो गुरु हमें सिखा नहीं सकते, तो प्रणिपात मतलब हाँ तुम ऐसे करो, तो गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं। पर परिप्रश्न से क्या होता है, हम स्वयं मार्ग देख सकते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं ऐसे क्यों करना चाहिए, ऐसे करने से क्या होगा, तो उससे हमारे विचार की शक्ति भी बढ़ती है और फिर हम समझ सकते हैं हाँ ये उचित मार्ग है या अनुचित मार्ग है। तो उस तो प्रणिपात से गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, परिप्रश्न से हम स्वयं मार्ग देखना सीख सकते हैं और सेवया से हम उस मार्ग पर चलते हैं। प्रणिपात और परिप्रश्न प्रश्न करेंगे सेवा नहीं करेंगे तो मार्ग दिखेगा पर चलेंगे नहीं हम मार्ग पर, ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, तीनों है। तो साधारणतया हमारे भक्ति के पहले कुछ सालों में तो हमें प्रणिपात करके मार्ग देखना है, उस मार्ग पर चलना है सेवा करके। पर जैसे हम भक्ति में कई साल बिताते हैं तो हमें भी हमारे आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करके हमें समझना चाहिए कि हाँ इस तरह से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक रहेंगे ऐसे आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए परिप्रश्न उचित है। तो परिप्रश्न का भाव चुनौती का नहीं होना चाहिए, परिपाट का होना चाहिए, नम्रता के साथ हम समझने के लिए जरूर कर सकते हैं सवाल, उनको अनुचित नहीं है। Any other questions? Yes,
please. पंच पांडव ने भगवान की महान भक्त थे के बावजूद भी ऐसे सुना है कि उनको नरक दर्शन हुआ, तो उसके पीछे कुछ भगवान दिखाना चाहते हैं या इसको कोई कारण?
हाँ, तो पांडवों को नरक दर्शन क्यों हुआ? मैं जैसे बता रहा था कि महाभारत अधिकांश रूप से कर्मकांड के दृष्टि से दिखाता है, और जो भागवतम है वह शुद्ध भक्ति की दृष्टि से हमें प्रसंगों का वर्णन कर रहा है। तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रसंग है जो महाभारत और भागवतम में अलग वृत्तांत है। तो महाभागवतम में हम देखते हैं तो पांडवों को न तो नरक न स्वर्ग का दर्शन करना पड़ा। यहाँ पे देखते हैं कि हम 15वें अध्याय में आएगा इसी स्कंद के कि सब पांडव जो होते अपने शरीर में ही भगवत धाम लौट जाते हैं। तो यहाँ पे जो आचार्यगण बताते हैं कि जो महाभारत है वह ऐतिहासिक प्रसंगों को कर्मकांड की दृष्टि से दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या है कि जो भगवान की लीलाएं है वो हर एक कल्प में पुनः पुनः होती है। तो महाभारत एक कल्प का वर्णन कर रहा है, श्रीमद् भागवतम दूसरे कल्प का वर्णन कर रहा है। तो इस तरह से कल्प भेद के द्वारा आचार्यगण कई बार कई अनेक प्रसंगों का जो विवाद थोड़े अलग अलग लगते हैं वृत्तांत है, उसको वो समन्वय कराते हैं। पर अगर दूसरे कल्प में भी ऐसे हुआ है कि पांडवों को नरक देखना पड़ा तो वो क्यों हुआ ऐसे ना? तो वहां पर बताया गया है कि कर्मकांड की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वास्तव में कोई भी पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो पांडवों को थोड़ा बहुत अनैतिक कार्य करना पड़ा उसके कारण उन्हें उसका परिणाम देखना पड़ा। तो वास्तव में जो कुछ क्षणों के लिए नरक देखना यह कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है, और उससे प्रसंग क्या दिखाते हैं उससे भी कि वास्तव में उस परिस्थिति में भी पांडव भगवान की भक्ति त्यागते नहीं है। तो भक्तिम ठाकुर कहते हैं अपने गीतों में कि अगर नरक भी जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं है। चित्रवेद महाराज भी कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्य अर्थ दर्शन। तो अगर किसी कल्प में भगवान के भक्तों को नरक देखना भी पड़े तो वास्तव में जो जिनको वो देखते हैं नरक में उनका भी उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए उससे वो अगर हुआ भी है किसी और कल्प में तो उससे भक्ति के तत्वों का उल्लंघन नहीं है, पर जो कर्मकांड के तत्वों का भी दर्शन भगवान करा रहे हैं उसमें। ओके, ये सवाल है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। ईश्वर परम विष्णु सच्चिदानंद विग्रह।